श्रीमद् भागवतम क्लास इन जूहू 19th अगस्त 5th कैंटो चैप्टर 10 टेक्स्ट 20।
असीम कृष्णा नहीं है माय टेप रिकॉर्डर डजंट वर्क
इट्स देयर आई एम वर्किंग ऑन दैट टेप
हरे कृष्णा हरे कृष्णा आज अच्छी बारिश आ रही है भक्त हरी नाम कर रहे हैं ना इसलिए बारिश आ रही है और बाकी लोग पूरी स्पीक इन हिंदी यू डोंट हैव टू अटेंड भक्त रूप आई फील एम्बैरस्ड इट यू क्वालिफाइड फॉर मी Too many garlands. I'm not a garland man.
Give me
here, I'll take you for that. Huh? For that cloud. Asim Krishna nahi hai?
Jai Radha Madhava Thank you.
यशोमतिनन्दना राजबालोनन्दना गोकुलरञ्जनकाना यशोमतिनन्दना राजबालोनन्दना
Oh, my God.
Paramahansa, Prayabhijakacharya, Sotara Sata, Sri Shimad, His Divine Grace, Shila, Abhichana, Vrindam Bhakti, Vedanta Swami, Shila Prabhupada Maharaj Ki, Jagat Guru, Shila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnavinda Ki, Eskand Pondacharya, Shila Prabhupada Ki, Sri Sri Gonitai Ki, Sri Sri Radha Rajbhari Lalita Vishagat Ki, Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman Ki, Gopam Samkaran Yagya Ki, Transcendental Book Distribution Ki, All Glories to the Samadhi Muni, All Glories to the Samadhi Muni, All Glories to the Samadhi Muni, All Glories to Sri Guru and Sri Gananda. Class English mein or Hindi mein? Hindi? Srimad Bhagavatam, Panchma Skand, Dasvadhyay, Shlok number 20. Shlok likha hua hai board mein? Sa vai bhava loka, if any like, nirikshitartham. Avyakta Lengo Vicharatyapi Svet Yogeshwaranam Gatem Andha Buddhi Katham Vichakshita Vihanubandha Sāvai bhava loka nirakshanartham Avyakta lingo vijaratya pisvet Yogeshwaranam gatim andha buddhi Katham vichakshita gyanu bandha Sahave bhava loka nirakshanartham Avyakta lingo vicharatya pisve Yogeshwaranam gatim andha buddhi Katham vichakshita gyanu bandha Sahave bhava loka nirakshanartham Avyakta lingo vicharatya pisve Yogeshwaranam gatim andha buddhi Katham vichakshita gyanu bandha Or koi? that is Shabdar.
Saha, Lord Shri Bhagavan,
Lord Shri Bhagavan,
Yamunthavatar,
Yamunthavatar,
Shri Kapildev,
Shri Kapildev,
Vahi,
Vahi,
Nisandev,
Nisandev,
Bhava,
Bhava,
Ha,
Ha,
Lokanirikshanartham,
Lokanirikshanartham,
Is Samsar ke logon ke chaitron ka,
Is Samsar ke logon ke chaitron ka,
Adhyan karne ke liye,
Adhyan karne ke liye,
क्या यह सच नहीं कि आप श्री भगवान के अवतार कपिलदेव के साक्षात प्रतिनिधि हैं? मनुष्यों की परीक्षा लेने और यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं, आपने अपने आप को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया है। क्या आप संसार भर में इस प्रकार से भ्रमण नहीं कर रहे हैं? मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से पीड़ित हूँ। इतने पर भी मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएं कि मैं किस प्रकार आत्मजीवन में प्रगति कर सकता हूँ। यद्यपि महाराज रघुगण राजा की भूमिका निभा रहे थे, किंतु जड़ भर ने उन्हें बता दिया था कि वे न तो राजा थे नहीं जड़ भरत कोई गुंगा भरा पुरुष था। ऐसे नाम आत्मा के आवरण मात्र हैं। सबको इस ज्ञान तक पहुंचना है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, दैनो यस्मि तथा दैनि। प्रत्येक प्राणी शरीर के भीतर बंद है, क्योंकि शरीर कभी आत्मा के समरूप नहीं हो सकता। अतः समस्त शारीरिक कार्य मात्र मोह जनित हैं। जड़ भरत जैसे साधु की संगति से महाराज रघुवर को यह बोध हो सका कि राजा के रूप में उनके सारे कार्य मोहजनित हैं, इसलिए उसने जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया और यही उसकी सिद्धि का शुभारंभ था। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत्। पुरुष को महाराज रघुवर की भांति जड़ भरत के समान महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करके आत्मतत्व जानना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। मनुष्य को चाहिए कि वह जड़ भरत जैसे गुरु के पास पहुंचकर मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा करे।
ओम ज्ञान त्रिविनंदस्य ज्ञानञ्जनाशलाक्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं तद्ज्ञानेन भूतले स्वयं रूपकृतं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथमितं तं सजीवं सद्वैतं सुमधुरं सहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत ते गोपेश गोपिका राधा कृष्ण नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि वंचा कल्पतरुभ्य फलितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवानन्द गौरभक्त हरे निरक्षणार्थं व्यक्तलिङ्गो विचरत्यपि स्वेत् योगेश्वरनां गतिम् अन्धबुद्धि कथं विचक्षित गृहानुबन्ध तो ये श्लोक उच्चारण महाराज रहुगुना कर रहे हैं और आप पांचवें स्कंध में महाराज भारत की कथा पढ़ते हो। महाराज भारत भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ का अर्थ है संस्कृत में सबसे प्रसिद्ध और वो भगवान के अवतार थे। उनके पिता महाराज नाभि और माता मेरु देवी एक यज्ञ कर रही थी इस भावना से कि उन्हें पुत्र भगवान के भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। भगवान के यज्ञ से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए ये तो संभव है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। वो बने ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। अब भाग्य 100 पुत्र भगवान के लिए क्या संभव है? हम बीजा प्रदा पिता, हम सब उनकी संतान हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भारत महाराज। भारत महाराज ने पूरे पृथ्वी पर शासन किया। आज तो अनेक छोटे छोटे देश हैं, पर प्राचीन समय में पूरे विश्व का एक सम्राट था और वो थे भारत महाराज। भारत महाराज के शासन के समय लोग इतने सुखी थे कि ये पूरे ब्रह्मांड का नाम बन गया भारतवर्ष। हाँ, जब आप भारत शब्द का उपयोग करो तो उसे इंडिया माना जाता है, जो कि पूरे विश्व का एक छोटा सा अंग है। पर एक समय था कि पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। आज भी अगर आप जाओ इंडोनेशिया जैसे मुसलमान देश में भी वैदिक संस्कृति का प्रभाव है। इंडोनेशिया देश का नेशनल एम्बलम है गरुड़, उनकी जो एयरलाइन है देश की उसका नाम है गरुड़ एयरलाइन। वहाँ भी रामायण का नाटक वगैरह होता है। तो बिना शंका के एक समय पूरे विश्व में वैदिक संस्कृति का प्रभाव था। तो भारत महाराज ने पूरे पृथ्वी पर हजारों साल शासन किया। और शासन करने के पश्चात उन्होंने जिम्मेदारी अपने पुत्र को दी। वो गए आगे जंगल में भगवान का चिंतन करने के लिए। और भगवान का चिंतन कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने देखा एक हिरनी भाग रही है, क्योंकि उसके पीछे एक शेर आ रहा था। आपने कभी शेर का दर्शन किया है? मैंने किया। एक समय मैं कॉम्प्यूटर में जप कर रहा था, सुबह दूर से एक आवाज़ आ रही थी। मैंने भक्त से पूछा ये आवाज़ किसकी है? कहता है 1 किलोमीटर दूर पर शेर है। तो ये शेर की आवाज़ है। और एक दफ़े मैं कीनिया में जप कर रहा था एक पार्क में, और थोड़ी दूरी में वहाँ एक शेर था और वो शेर था पिंजरे के अंदर वक्त ने कहा कि वहाँ शेर है इन्होंने ना खेच अफ्रीका में कई जगह शेर हैं तो ये हिरनी के पीछे एक शेर था हिरनी के घर में एक बच्चा था हिरनी छलांग मारी अपनी जान को बचाने के लिए वो तो मर गई पर बच्चा बाहर आ गया महाराज भारत ने सोचा भगवान की इच्छा है शायद कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूं और उस बच्चे को वो पाल रहे थे जैसे एक माता अपने पुत्र को पालती है एक तरह से तो भारत महाराज ने हर प्रकार के भौतिक सुख को त्यागा था और जंगल में आके फंस गए एक हिरण के साथ और एक दिन जब वो हिरण नजरों से दूर था तो हिरण को खोजते खोजते उन्हें उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया भगवद गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्वरण भवाओ जहाँ तुम्हारा मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा इसलिए शास्त्रों का निर्णय है अंते नारायण स्मृति इस प्रकार से जीवन का उपयोग करो कि अंतिम समय में आप भगवान का स्मरण कर सको मान लो आप अंतिम समय ये चिंतन कर रहे हो मैंने इतना बड़ा मकान बनाया जू स्कीम में इतनी मेहनत करके करोड़ों रुपए खर्चे अब मुझे यहाँ रहने के लिए केवल 30 साल ही मिले 40 साल आप तो मिलने चाहिए थे तो भगवान इतने दयालु हैं कि आप अगले जीवन में उसी मकान में जी जन्म लोगे पर माले के रूप में नहीं किस रूप में कोई चींटी या कीड़े के रूप में तो जहाँ मन का मृत्यु हो मन हो मृत्यु के समय उस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा मान लो आप सोच रहे हो भारत की क्रिकेट टीम क्यों नहीं जीत रही तो मृत्यु के बाद फिर क्रिकेट के मैदान में आप घास बन सकते हो तो जहाँ मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा तो जब भारत इस हिरण को खोज रहे थे जो नजरों से दूर हो गया था और खोजते खोजते शरीर का फिर उन्हें जन्म ग्रहण करना पड़ा इस पशु के रूप में तो भगवान साथ में ये भी कहते हैं जो भक्ति करता है वो भक्ति बेकार में नहीं जाती तो ज़्यादा समय उन्हें नहीं रहना पड़ा और फिर उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया और भगवान ने उनको शक्ति दी थी जिसके द्वारा वो पूर्व जन्म के गलतियाँ जो थी उनको वो समझ पाए इसलिए जब भारत ने ये निर्णय कर लिया कि मैंने समाज में अभी गूंगा और बहरे का व्यवहार करना है इंग्लिश में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय एक बार अगर आपको कोई धोखा दे तो दूसरी बार आप उससे डरते हो है ना तो मान लो किसी ने आपको कर्जा दिया हो ना वो कर्जा नहीं चुका है अगली बार वो आएगा आपसे पैसे मांगने आप दोगे नहीं दोगे तो जब भारत ने निर्णय कर लिया कि अब मैंने जो पिछले जन्म में जो मेरा आकर्षण हो गया था पशु के प्रति उस प्रकार की गलती मैंने नहीं करनी उनका समाज में व्यवहार था जैसे वो बहरे थे और गूंगे थे तो एक समय एक खेती की देखभाल वो कर रहे थे और डाकू ने उन्हें जो गलती से पकड़ लिया था और वो देवी कली को अर्पण करने लगे थे और जब भारत का मन जुड़ा हुआ था भगवान के चिंतन में और क्योंकि वो इतने गहराई से जुड़े हुए थे भगवान के चिंतन में देवी कली मूर्ति से निकली और उसी बलि से डाकू जो उनको काटने वाले थे उन्हें समाप्त कर दिया तो जब भारत थे बहुत ऊंचे कोटि के भक्त 24 घंटे जुड़े हुए थे भगवान के चिंतन में उसी समय एक राजा थे जिनका नाम था महाराज रघुगना। और महाराज रघुगना को पलकी में उठा कर ले जा रहे थे। महाराज रघुगना सिंध स्थान के राजा थे और सिंधु और सुबेरा के राजा थे। उन्हें पलकी में उठाकर जा रहे थे। और प्राचीन समय में जो राजा होते थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था। जैसे अब चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो, रामनंद रॉय जब चैतन्य महाप्रभु जी को मिले गोदावरी नदी के तट पर, तो रामनंद रॉय किस में थे? एक पलकी में थे। तो राजा जा रहा था कथा सुनने के लिए। राजा में राजसिक भाव तो था पर भक्ति भाव भी था। तो राजा ने कहा, स्पीड अप, जल्दी, मुझे देर हो रही है। तो मोटर, आप जो मोटर चला रहे हो देर हो रही है, अब एक्सीलेटर दबाते हो मोटर तेज हो जाती है। तो वहाँ जद भारत खड़े थे। जद भारत लंबे थे, बड़े कंधे थे, पहलवान का स्वास था उनका। तो जब राजा के सेवकों ने देखा जद भारत वहाँ खड़े हैं, ए आओ मदद करो राजा की पलकी को उठाने में। तो जद भारत जुड़ गए। उनका तो व्यवहार समाज में क्या था, जैसे वो गूंगे थे और बहरे। राजा जल्दी में जाना चाहता था। और जब जद भारत साथ जुड़े उन्होंने अनुभव किया कि पलकी थोड़ी डामंडोल हो रही है और तेज जाने के बजाय ज़्यादा धीमे जा रही है। तो राजा ने, ये क्या हो गया, मैंने तो तुम्हें बोला था जल्दी चलने के लिए, तुम ज़्यादा धीमे क्यों जा रहे हो। राजा डांटने लगा सेवकों को। सेवकों ने कहा, हे राजा, यह हमारा दोष नहीं, हमें मत डांटो बेकार में। ये जो नया व्यक्ति हमने जोड़ा है वो बहुत ध्यान से कदम रखता है पृथ्वी पर, और इसलिए ये पलकी डामंडोल हो रही है और ज़्यादा धीमे जा रही है। अंतर क्या था जद भारत और दूसरे सेवकों में? जद भारत है ऊंचे कोटि के संत वैष्णव आत्मज्ञानी व्यक्ति। वो किसी योनि को कष्ट नहीं देना चाहते थे। जो भक्त है भगवान का वो किसी योनि को कष्ट नहीं देना चाहता, इतना तक कि वो चीटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। तो जद भारत अपने पैर को पृथ्वी पर रखने से पहले ये देखते थे कि आगे तीन कदम तक कोई चीटी तो नहीं है। वो जो दूसरे सेवक थे उठाने वाले वो थे सुंदर स्वभाव के, उन्होंने तो चिंता नहीं की, वो तो भाग रहे थे चाहे चीटी पर पैर आए या किस पर आए। तो इसलिए वो पलकी तेज जाने के बजाय धीमे धीमे जाने लगी। तो राजा ने फिर डांटा किसी जद भारत को। पहले उन्होंने ताना मारा, ताना समझते हो, सकाश। राजा ने कहा, श्वास तो अच्छा है, क्योंकि जदवर्ण का श्वास तो बड़ा अच्छा था, पर बुद्धि नहीं है। राजा ने डांटा क्योंकि राजा को गुस्सा आ गया, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, इस मूर्ख व्यक्ति को जोड़ा साथ और पलकी तेज जाने की वजह ज़्यादा धीमे जा रही है। और उन्हें पता लग गया कि जो दूसरे पुराने सेवक है वो कारण नहीं है। कारण कौन था? ये नया व्यक्ति जद भारत जो जोड़ा है। तो उन्होंने बड़े ताने के रूप में इन जद भारत को डांटा। जद भारत ने पहले तो सह लिया सब कुछ। जो भक्त है वो अत्यंत सहनशील होता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर आप सदा हरि नाम का उच्चारण करना चाहते हो तो हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए। कौन सा है वो प्रसिद्ध श्लोक शिक्षा चाहिए ना रोड़ अपनी अमानी न मन देना कितने भी सदा। अत्यंत सहनशील होने की आवश्यकता है। भौतिक संसार में सुख दुख, आदर अपमान, हार जीत, सर्दी गर्मी, ये घटनाएं बीतेंगी। ये नहीं कि हम घबरा जाएं। इसी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए। उस साधु के लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण है सहनशीलता। तो शुरू में तो जद भारत ने सब कुछ सह लिया। फिर जद भारत ने जब देखा कि मान रघुनाथ कह रहे हैं मैं राजा हूं, तुम मेरे दास हो, तुम ये समझ नहीं पा रहे, तो फिर जद भारत ने सोचा अब मुझे इस राजा की अज्ञानता को दूर करने दो। फिर जद भारत बोले और जब वो बोले शेर जैसे बोले। जद भारत ने कहा आप सोचते हो आप राजा हो, मैं सेवक हूं, आप मेरे पर हुक्म कर सकते हो, और आप जानते हो कि ये जो स्थान है ये अस्थाई स्थान है। आज आप राजा हो, कल आप सेवक बन सकते हो, कल आप नौकर बन सकते हो, ये थोड़ी कि आप हमेशा राजा रहोगे। तो जब जद भारत ने उपदेश देना शुरू किया, महाराज रघुनाथ जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी था, वो समझ गए ये जो प्राणी है ये कोई गूंगा बहरा नहीं है, ये मूर्ख नहीं है, ये क्या है, आत्मज्ञानी व्यक्ति है। वो समझ गए ये आत्मज्ञानी व्यक्ति है, इसके पास पूरा ज्ञान है। तो फिर राजा पलकी से नीचे आया, राजा एकदम पलकी से नीचे आ गया। राजा ने जद भारत को प्रणाम किया, कहा कि आप हो कौन, आपके शरीर में मुझे एक जिनू दिख रहा है, वैसे लगता कि आप ब्राह्मण हो, क्या आप दत्तात्रेय जैसे आत्मज्ञानी हो, अब हो कौन। उजाल राजा समझ गया, क्या समझ गया कि आप क्या हो, ये तो संत महात्मा है। राजा के मन में पछतावा आया, मैंने इसे डांटा, मैंने इसको दोष दिया, मैंने इसको ताने मारे, पर ये तो आत्मज्ञानी है। जद भारत ने राजा ने कहा मुझे यामराज से भय नहीं, इंद्रा के थंडरबोल्ट से डर नहीं, पर मैं किसी वैष्णव को अपराध नहीं करना चाहता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा कि अगर आप सुंदर बगीचा भी पीछा बनाओगे, अगर वैष्णव अपराध करोगे तो भक्ति का सारा लाभ समाप्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति के मार्ग में हमें बड़े ध्यान से चलना चाहिए कि हम किसी प्रकार से वैष्णव अपराध नहीं करें, क्योंकि वैष्णव अपराध का ये परिणाम होता है कि जो हरि नाम का लाभ है, जो भक्ति का लाभ है, क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया जिस प्रकार अगर आप एक सुंदर बगीचा बनाओ और सुंदर बगीचे में एक पागल हाथी को छोड़ दो तो क्या होगा, सुंदर बगीचा बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो महाराज रघुनाथ ने जद भारत से माफी मांगी, उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया था कि आप आत्मज्ञानी हो, मैं तो समझ रहा था आप मूर्ख हो। तो जद भारत के उदाहरण से हमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। यहाँ आप देखते हो कि जद भारत का जो व्यवहार था गूंगे और भैरे का था, पर जब उन्हें मौका मिला उपदेश देने का रघुगणा को, वो शेर बन गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि भौतिक स्थिति में हमें हम सबको गूंगा और भैरा बन जाना चाहिए, प्रजल्पा से बचना चाहिए, भौतिक चर्चा से बचना चाहिए, और जब हमें प्रचार का मौका मिले तो हमें क्या होना चाहिए, शेर जैसे उपदेश देना चाहिए। एक समय अमेरिका में प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी हाउ कैन आई बी हम्बल एंड प्रीच एट द सेम टाइम, मैं विनम्रता का स्वभाव कैसे रखूं और प्रचार भी कैसे करूं। प्रभुपाद जी ने कहा बी अ लैम एट होम एंड अ लायन आउटसाइड। जब भक्तों के साथ संबंध रखो तो लैम, लैम को क्या कहते हैं, तो भेड़ी जैसे व्यवहार, और जब प्रचार के लिए जाओ तो शेर बन जाओ। ये नहीं घर में शेर बनो और प्रचार में जाओ तो भेड़ी बन जाओ। हमारे पास कई बार घर में बन जाते हैं शेर और जो प्रचार के लिए जाते हैं भेड़ी बन जाते हैं। तो जैसे भारत के विषय में हम देखते हैं कि उन्होंने शुरू में तो सब सहेलियां भेज दी, तो जब उन्होंने देखा कि रहुगणा को शिक्षा की आवश्यकता है तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तो जब उन्होंने उपदेश दिया तो रहुगणा पहचान गए क्या कि आप कौन हो, आत्मज्ञानी। तो आज का जो श्लोक है इसका उच्चारण महाराज रहुगणा कर रहे हैं। महाराज रहुगणा कह रहे हैं आप जो हो कपिल देव भगवान के प्रतिनिधि हो। तो भगवान कपिल देव कौन थे, स्वयं भगवान। भगवान के अवतारों के 6 विभाग हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, मन्वंतर अवतार, गुण अवतार, शक्तिवेश अवतार, योग अवतार। भगवान कपिल देव देवहूति के पुत्र थे, उनको उपदेश हमें भागवतम के कौन से स्कंध में प्राप्त होता है, 3 स्कंध में प्राप्त होता है। भगवान कपिल देव ने शंख योग का सिद्धांत हमें दिया और जिसका निर्णय निचोड़ है भक्ति। शंख योग का भी निचोड़ क्या है, भक्ति माध्यम है जिसके द्वारा अपरम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। तो यहाँ रघुना कह रहे हैं आप जो हो भगवान कपिल देव के प्रतिनिधि हैं। जो गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधि है, तो भगवान का संदेश देता है। और आप जो हो वैसे तो गूंगे और बहरे का व्यवहार कर रहे हो, पर आप असल में गूंगे और बहरे नहीं हो, आप तो आत्मज्ञानी हो। और वो अपने विषय में क्या कह रहे हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में आसक्त हूँ, गृहस्थ आश्रम में फंसा हुआ हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक ज्ञान। कह रहे मैं अंधा हूँ, असल में रहुगणा अंधे नहीं थे, रहुगणा में भी दिव्य ज्ञान था, पर क्योंकि वो राजा भी थे तो थोड़ा राजसिक प्रभाव भी था। और महाराज रहुगणा पलकी में कहाँ जा रहे थे, पलकी में जा रहे थे कपिला आश्रम पहुँचने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कोई सिनेमा देखने नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे संत के आश्रम में कथा सुनने के लिए। तो उनमें भी आध्यात्मिक रुचि थी, पर जब वो जद भारत को मिले उन्होंने कहा मैं तो मूर्ख हूँ, मैं अंधा हूँ, मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे प्रकाश दीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, ये बताओ कि मैं आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकूं। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़े, ये नहीं कि हम भौतिक क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े। और महाराज रोगना की विनम्रता क्या है, विनम्रता यह है कि वो कह रहे हैं मैं तो अज्ञान हूँ, मैं अंधा हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, आपके आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से अज्ञानता दूर होगी और मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूंगा। तो हम सब में ये विनम्रता होनी चाहिए। प्रीतु महाराज भगवान के अवतार हैं, उनका उपदेश अब भगवतम के 4 स्कंद में प्राप्त करते हो। तो जब प्रीतु महाराज कुमारस को मिले तो उन्होंने बड़े विनम्रता से उनके चरणों को धोया और उनसे क्या ज्ञान की भीख मांगी। तो जब हम संतों की संगत में आते हैं कई बार हम कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, तो कहते हैं हाँ आशीर्वाद बाकी तो स्वामी दे देते हैं, पर हम अक्सर आशीर्वाद मांगते हैं भौतिक प्रगति के लिए। पर जब आप संतों को मिलो तो ये पूछो कि भक्ति में आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, ये होना चाहिए हम सबका लक्ष्य। तो महाराज रघुगुना कह रहे हैं कि मैं आपके सामने हूँ पर मैं आध्यात्मिक जीवन से दूर हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि महाराज रघुगुना की अज्ञानता दूर हुई कैसे, जद भारत की संगत के द्वारा। साधु संगत, साधु संगत सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संगत सर्व सिद्धि आया। चैतन्य चरितमृता में यह प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है कि हमें साधु की संगत में रहना चाहिए, साधु की संगत प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। साधु किसे कहते हैं, साधु के क्या लक्षण है, साधु की क्या पहचान है, ये ज्ञान हमें भगवान कपिला देव देते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद में, जहाँ वो कहते हैं तितिक्ष्व करुणिका सूरद सर्वधैनम अजत शतव संत साधु साधु भूषणा। साधु का संक्षेप में एक लक्षण यह है कि उसका जो चरित्र है शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, ये नहीं कि हम साधु के वस्त्र पहन लें और फिर गांजा पिए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, ये नहीं कि मुंह में राम राम बगल में छोड़ें। साधु का जो चरित्र है, आचरण है, शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। शास्त्र का क्या अर्थ, भगवान की वाणी। तो शास्त्र का जो आचरण है, चरित्र है, स्वभाव है, शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, और शास्त्र पर आधारित होगा तो फिर लोग उनमें में उसका कहना मानेंगे। पर आज लोग इतनी अज्ञानता में हैं, हम देखते हैं कि ये संत महात्मा साधु साधु बुला रहे हैं पर इनका व्यवहार आचरण शास्त्र बधारे नहीं है, तो भी हम उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हम पहचानने का प्रयास ही नहीं करते कि किसका आचरण शास्त्र बधारित है, किसकी शिक्षा शास्त्र आधारित है। साधु का आचरण होना चाहिए शास्त्र पर आधारित, उनका उपदेश भी होना चाहिए शास्त्र पर आधारित। धर्मां ते साक्षात् भगवत परिणाम, धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। ये नहीं कि हम साधु अपने आप को बुलाएं और हम अपना उपदेश दें, नहीं। आजकल आप देखते हो अनेक धर्म के प्रचारक बड़ी बड़ी कथा इत्यादि करते हैं, पर अगर आप उनके विचारों को उपदेश को देखो ध्यान से तो देखो कि शास्त्र पर आधारित नहीं है। तो साधु की संगत पर बल दिया गया है हमारे शास्त्रों में, और लाभ मात्र एक छोटे पल के लिए भी अगर आपको साधु की संगत मिल जाए आपको जीवन सुधर सकता है। आप देखते हो श्री प्रभुपाद जी, उन्होंने कृष्ण भक्ति की स्थापना की सारे विश्व में, और प्रभुपाद जी एक देश में जाते थे, एक स्थान में जाते थे थोड़े दिनों के लिए, और बीज बो देते थे भक्ति का जो आगे बढ़ता था। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी गए थे रशिया के देश में, गए थे 4 दिन के लिए, और उनके एक शिष्य श्याम सुंदर का परिचय हुआ एक रशियन भक्त के साथ जो थोड़ी अंग्रेजी भी जानता था, जिसकी योगा में रुचि थी। प्रभुपाद जी की संगत में आया वो, प्रभुपाद जी ने उसे बीज बोया भक्ति का, 2 दिन में दीक्षा भी दे दी क्योंकि उस देश में प्रभुपाद जी चाहते थे कि महाप्रभु का आंदोलन आगे बढ़े, और प्रभुपाद जी 4 दिन 5 दिन के बाद निकल गए वो देश से। वो प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रचार करना शुरू किया, 2 दिन थोड़ी सी संगत मिली थी प्रभुपाद जी के, और आज उस देश में हजारों हजारों भक्त, और ये कैसे हुआ, थोड़ी सी संगत के द्वारा। तो अगर आपका सौभाग्य हो कि शुद्ध साधु की संगत मिले तो एक पल में भी आपका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो सकता है। तो साधु संगत हमें प्राप्त करनी चाहिए, और ये साधु संगत प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। एक साधन है भक्त की संगत, दूसरा है ग्रंथों की संगत, जैसे कि प्रभुपाद जी ने बड़े प्रयास के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में। रागे इन ग्रंथों का अनुवाद आज विश्व के 70 से अधिक भाषा में हो गया है, और जब हम इन ग्रंथों को प्राप्त पढ़ते हैं, इन ग्रंथों में क्या है, भगवान की वाणी और संतों का तात्पर्य, और अगर हम इन्हें पढ़ें तो हम साधु संगत में हैं, और तो हमें हमारा प्रयास रहना चाहिए भक्तों की संगत में रहे। आप में से जो घरों में रहते हो, आपका प्रयास होना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर आइए, क्लास में बैठिए, कीर्तन में आइए, इस प्रकार भक्तों की संगत का लाभ उठाए। तो जब भारत से महाराज रघुनाथ ये विनती कर रहे हैं क्या हमें आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, तो जैन भारत का व्यवहार था गुंग और भैरव, और जब उपदेश देने का प्रश्न है वो क्या बन गए, शेर। तो गुंग और भैरव का ये अर्थ नहीं कि हम एक गुंगे और भैरव हो जाए, पर इसका ये अर्थ है कि हमें भौतिक चर्चा से बचें। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं प्रज्वलपन यमाग्रह, अगर एक जीव के द्वारा हम भौतिक चर्चा, भौतिक विषयों की चर्चा करेंगे तो भक्ति का बगीचा जो है नष्ट हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उन कार्यों को स्वीकार करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उन्हें त्यागो। तो अनुकूल क्या है, एक कार्य जो अनुकूल है भगवान के नामों का उच्चारण करना ध्यानपूर्वक, ग्रंथों का अध्ययन करना, भक्तों की संग में रहना, सेवा में जुड़ना, अनेक प्रकार के सेवाएं सेवा में जुड़ना, और जब उनका पालन नहीं करें तो ये प्रतिकूल कार्य बन जाते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के इस प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, धीनोस्मिन यथा देह कामना अविनाम जरा। तो भगवद गीता का दूसरा अध्याय जो है उसमें हमें बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है आत्मा के विषय में। आज हम सब अज्ञानता के कारण यही सोचते हैं ये देह हमारा असली स्वरूप है कि नहीं, सुबह से रात तक हमें देह की चिंता रहती है। अगर कोई व्यक्ति आपको कह दे यू लुक वेरी हैंडसम और ब्यूटीफुल, तो बड़े खूबसूरत नजर आते हो, हम खुश हो जाते हैं। और अगर कोई कह दे अब बूढ़ी नजर आ रहे हो या बदसूरत नजर आ रहे हो, तो हम अपमान महसूस कर लेते हैं। देह की हमें चिंता रहती है, पर भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक भगवान बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। ठाकुर भक्तिनाथ जी ने अपने तात्पर्य में कहा है पूरे भगवद गीता में दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। आत्मा है सनातन, न जायते मृते वा कदाचन, ना कभी इसका जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। ये जो भौतिक देह है ये थोड़े समय के लिए है। जद भारत ने यही कहा ना रघुनाथ को, आप मुझे डांट रहे हो, आप पलकी में बैठे हो, आप राजा हो, और आप जानते हो कि ये राजापन भी थोड़े समय के लिए ही है। पर अज्ञानता का प्रभाव कैसा है कि जब हमें कोई सुविधा प्राप्त होती है, जब हमारे हाथ में कोई ऊंचा पद होता है, तो हम सोचते हैं ये तो हमेशा ही रहेगा। पर शास्त्र में कहा गया कदम कदम पर खतरा है, तो दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कौन धीनस्मिन यथा देह, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि शरीर बदल रहा है, और मृत्यु के समय आत्मा का क्या होता है, केवल ध्यानतर होता है, एक शरीर को त्याग कर अगला देह स्वीकार कर दिया है। और ये कैसे निर्णय किया जाता है, देवहूति ने अपने पुत्र कपिला देव से पूछा हमारे कार्यों के कौन साक्षी हैं। कई बार जब आप ये चिंता ये चर्चा करो आत्मा सनातन है शरीर नश्वर है, तो लोग पूछते हैं साक्षी कौन है, हु इज विटनेस, है ना, कौन साक्षी बन रहा है। प्रभुपाद जी हमें कहते थे कि जब वो स्कॉटिश कॉलेज कैलकटा में थे तो उनके एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, तो कहते थे यू हिंदूज बिलीव इन रीइंकार्नेशन बट हु इज विटनेसिंग ऑल आवर एक्टिविटीज, तुम हिंदू लोग रीइंकार्नेशन में विश्वास करते हो तो कौन बन रहा है साक्षी, तो कई साक्षी हैं, कान मना देव नेत्र ना जंतु देहो पपत है, कई साक्षी हैं, सूर्य के देवता, नेत्र के, चंद्रमा के देवता, तारे, वायु के देवता, हज, ये सब साक्षी बनते हैं। और मृत्यु क्या है, अब एक शरीर को त्याग कर अगला शरीर ग्रहण कर रहे हो, और ये शरीर किस कैसे निर्णय होता है, कर्मों पर आधारित। तो यही इस विषय की चर्चा यहाँ दूसरे तात्पर्य में प्रभा जी कर रहे हैं। और जो महाराज रोगना हैं उन्हें बड़ी जिज्ञासा थी आध्यात्मिक जीवन के विषय में, और इसलिए प्रभा जी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, तस्मा गुरु प्रपदे अते, प्रमाणिक गुरु की शरण लो। तो गुरु की गुरु के अनेक गुणों में एक गुण ये आवश्यक है, वाचु वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार प्रस्थ वेगम, गुरु में मन और बुद्धि और इंद्रियों पर वश होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहें हाँ गुरु महात्मा बन गए और वो हो इंद्रियों का दास। और चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश देते हुए कहा इस विषय में, पहले कदम में गुरु की शरण लो, फिर दीक्षा लो, सेवा करो, आगे पूछो मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या त्यागना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो आपको मान लो आपको रसगुल्ले गुलाब जामुन का बहुत शौक है, तो आपको डायबिटीज हो गई जो भारत में कईयों को हो रही है, तो आपको फिर मीठा छोड़ना पड़ेगा या नहीं, छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो दवाई का असर नहीं पड़ेगा। तो गुरु की शरण लो, सेवा करो, दीक्षा लो, फिर पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और अगर कोई त्यागना किसी कार्य को त्यागने की आवश्यकता है तो क्या करो, त्यागो या नहीं त्यागो। रूप गोस्वामी जी कहते हैं हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, और कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कीमत भी भरनी पड़ती है, वो क्या है, वो कीमत जो प्रतिकूल कार्य है उसे हम त्यागें। तो यहाँ तात्पर्य की समाप्ति में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें जज भारत जैसे भगवान के प्रतिनिधि गुरु को स्वीकार करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जीवन का क्या है लक्ष्य, ये पूछना चाहिए। हम सबके मन में ये चिंता रहनी चाहिए कि जीवन का क्या है लक्ष्य और हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार भौतिक समाज में अगर आप भौतिक संपत्ति को बढ़ा रहे हो तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना, अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, चापलूसी करके, बेईमानी करके धन बढ़ जाए तो हम बड़े खुश होते हैं। पर हमें खुश होना चाहिए जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि हमें जत भारत जैसे भगवान के प्रतिनिधि की शरण लेनी चाहिए। और इस विषय में हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनि मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ईश्वरपुरी को स्वीकार किया। आप चैतन्य चैतन्य में दो भक्तों की कथा पढ़ते हो, एक का नाम है रामचंद्रपुरी, एक का नाम था ईश्वरपुरी, और दोनों के गुरु थे मानचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी में भक्तों की आलोचना करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उदाहरण के लिए जब सन्यासी आते थे जगन्नाथपुरी, पहले तो बड़ा प्रसाद लेकर भंडारा लेकर उनके पास पहुंच जाते थे। सन्यासी महात्मा कहते थे हम तो सन्यासी, हमें इतना नहीं चाहिए। अरे झगड़ा जी का प्रसाद है, आप नहीं लोगे? जो खा लेते थे कहते थे देखो हैं सन्यासी, खाते हैं गृहस्थ से भी ज्यादा। तो उनमें ये आदत थी नुक्स निकालने की। और वो एक समय उनके गुरु मानवेंद्रपुरी ये भाव प्रकट कर रहे थे कि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, मैंने भगवान की भक्ति शुद्ध भक्ति भाव प्राप्त नहीं हुआ। माधवेंद्रपुरी बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, 24 घंटे जुड़े हुए थे भगवान की चिंतन में, भगवान की सेवा में। तो माधव ईश्वर माधव ये रामचंद्रपुरी उन्हें उपदेश देने लगा। और गुरु मायावादी उपदेश, गुरु इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा तुम निकल जाओ मेरे नजरों से। इसकी तुलना में एक ईश्वरपुरी बड़े ऊंचे कोटि के भक्त थे, अपने गुरु की सेवा की बड़ी विनम्रता से, बुरी आयु में उनके माल को भी साफ करते थे। और ईश्वरपुरी रामचंद्र माधवेंद्रपुरी ने उन्हें तो आशीर्वाद दी, तुम सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाओगे, जो उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु और प्रभा जी के माध्यम से। तो गुरु की शरण लेना, गुरु की सेवा करना विनम्रता के साथ। जब चैतन्य महाप्रभु से बनारस में पूछा गया, आप इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हो, छोटी आयु में ही चैतन्य महाप्रभु संस्कृत के विद्वान बन गए थे, उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध महात्मा संस्कृत के पंडित थे केशव कश्मीरी, उन्हें भी हरा लिया था। पर मायावादी सन्यासी बनारस में कह रहे थे इतना प्रसिद्ध पंडित है संस्कृत का, पर पागलों जैसे नाच रहा है गा रहा है। और जब उस सभा में पूछा गया आप क्यों हमारे साथ बैठते नहीं, क्यों ये नाच रहे गा रहे हो पागलों जैसे, हाँ प्रभु ने कहा हाँ विनम्रता से, मेरे गुरु ने देखा और सोचा क्या का क्या कर कि क्या मूर्ख हूँ, ऐसे अब ये हरि नाम के योग्य हो। तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु को प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु का आचरण शास्त्र के आधार पर होना चाहिए और गुरु को उपदेश देना चाहिए शास्त्र पर आधारित। जैसे कि श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य, उन्होंने जो उपदेश हमें दिया 100% शास्त्र पर आधारित है, ये भी नहीं ऐसे। प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं कहा मेरे विचार से ऐसे होना चाहिए, उन्होंने हमें यही कहा कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। तो गुरु का जो संदेश है 100% शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। और आध्यात्मिक गुरु लेने की आवश्यकता तो है, पर उसका लाभ केवल जब है जब हम गुरु के संदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं, उनके आदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं। अगर हमारे मन में यह भाव है गुरु तो हमने लेना है पर नाम के लिए, करेंगे वही जो हमारा मन कहे, फिर कुछ फायदा नहीं, कुछ लाभ नहीं। लाभ जब है जब हम शिक्षा का पालन करने को तैयार हो, और गुरु की इच्छा क्या है कि शिष्य हरि नाम में रुचि बढ़ाए, शास्त्र में रुचि बढ़ाए, सेवा भावना बढ़ाए, विनम्रता का भाव अनुकूल हो, सेवा का भाव अनुकूल हो। और सेवा का भाव सबके प्रति, ये नहीं कि केवल गुरु की सेवा, सब वैष्णव की सेवा करना, सब संतों की सेवा करना, ये भाव हमारे में होना चाहिए कि हम संतों के संगत में रहें, संतों की सेवा करें। और साधु संगत के विषय में नारद मुनि भागवतम के 34 स्कंद में कहते हैं कि हम 3 प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। एक है उनकी संगत जो भक्ति में आपसे आगे हैं, दोज आर मोर एडवांस्ड देन यू। दूसरी है उनकी संगत जो आपके बराबर के हैं। तीसरे उनकी संगत जो भक्ति में आपसे पीछे है। तो जब आपका संगत हो उनकी जो भक्ति में आगे हैं आपसे, दोज आर मोर एडवांस्ड देन यू, तो हमें बड़ा प्रसन्न हो जाना चाहिए। शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है जब एक मोर पीकॉक बादल को देखता है पहली बार तो खुशी में नाचता है, बारिश के मौसम में जब देखता है। तो जब हमें मौका मिले एडवांस भक्तों की संगत में रहने का तो हमें बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? हमें ज्ञान मिलेगा जिसके सहयोग से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारे बराबर की संगत हमें प्राप्त हो तो उन भक्तों के साथ हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए। मित्रता का भाव का क्या अर्थ? हम एक दूसरे को आदर देते हैं, एक दूसरे के गुणों को देखते हैं, एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाते हैं, हम मिलकर प्रचार में जाते हैं, मिलकर प्रसाद खाते हैं, मिलकर सेवा करते हैं, यानी एकांत में। और जब आपको संगत मिले जो भक्ति में आपसे पीछे हैं तो उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए? दया के भाव। परा दुखा दुखी, जो वैष्णव है जब देखता है कि कोई आध्यात्मिकता में कमजोर है तो दया की दृष्टि से देखकर उसमें ये भावना होती है क्या कि मैं उसकी अज्ञानता को दूर करूँ। तो साधु संगति बहुत आवश्यकता है अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहें। तो संक्षेप में आज के श्लोक का उच्चारण महाराज रहुगुना कर रहे हैं, और ये श्लोक को किसको सुना रहे हैं? जद भारत को। और इस श्लोक में वो कह रहे हैं, आप जो हो भगवान कपिला देव के प्रतिनिधि हो। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये जो है ये आत्मज्ञानी हैं और क्या भगवान के प्रतिनिधि हैं। और उनसे उन्होंने क्या भीख मांगी? किसकी? आध्यात्मिक ज्ञान की। तो जब हम संतों की संगत में आए तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम उसे आध्यात्मिक ज्ञान की भीख मांगे। ये नहीं हमें ये अमेरिका की टिकट चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए। हमें ये भाव होना चाहिए कि हम किस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकें। तो यहाँ रघुगणा महाराज ने कहा, मैं तुम्हारे सामने ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी अज्ञानता को दूर करो और मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूँ। जैसे आप कोई ऊँचा बुखार हो तो आप बार बार थर्मामीटर डालते हो मुंह में देखने के लिए बुखार कम हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम खुद देखें हम भक्ति में आगे बढ़ रहे कि नहीं। मैं एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ और नॉट, हम भक्ति में हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ रही है कि नहीं, शास्त्र में रुचि बढ़ रही है कि नहीं, विनम्रता का भाव बढ़ रहा है कि नहीं। और अगर नहीं बढ़ रहा तो क्या करना चाहिए? हमें वैष्णव की संगत में पूछना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्य मकति प्रचति। छह प्रकार के संबंध होते हैं भक्तों में। एक है जो आपसे ज़्यादा एडवांस हैं उनसे पूछिए, जो मन की शंकाएं हैं कमजोरियां हैं वो प्रकट कीजिए, पूछिए इन्हें मैं दूर कैसे कर सकता हूँ। और इस प्रकार का स्वभाव रहेगा तो आप गलत मार्ग में भटकने से बच जाओगे। तो बख्यादा भागवत पढ़ना चाहिए, भक्तों की संगत में सुनना चाहिए और हमें इस शिक्षा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न? हाँ thank you for coming.
I just want to ask, when we hear and read so many lectures and proper books, we get enthusiastic to do someone's service and chant more. But when it practically comes to doing those things, we still have some reservations of fear in our heart, not fully do it.
प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी। जब इनका प्रश्न ये था, जब आप प्रॉपर के ग्रंथों को पढ़ते हो सेवा भाव बढ़ता है, और जब आप सेवा करने जाते हो तो माया सामने आ जाती है। हाँ ठीक है ठीक है। माया कहती है भगवान के इतने शरणागत होने की क्या आवश्यकता है, व्हाट्स द हरी, अभी तो बहुत समय बचा है, अभी तो तुम केवल 70 साल के हो, 90 साल के। तो हमें प्रयास करते जाना चाहिए। और भक्तों के लिए ध्यान पूर्वक जाप करना, सबसे महत्वपूर्ण अटेंटिव चैंटिंग ऑफ द होली नेम. अगर आप ध्यानपूर्वक जाप करोगे, अपना शास्त्र पढ़ोगे, फिर माया का विरोध ज़्यादा सरलता से कर सकोगे. सो वी हैव टू एंडेवर एंड कीप ट्राइंग एंड अटेंटिव चैंटिंग विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन आवर अटेम्प्ट टू सक्सीड स्पिरिचुअली. हाँ, आपका प्रश्न था नहीं. और कुछ? यस, और कोई प्रश्न नहीं? कोई प्रश्न नहीं? तो ये गलती है. जब आप जानते हो कुछ कार्य गलत कर रहे हो तो आपको सुधार लेना चाहिए. बार बार सुनने की आवश्यकता है, इसलिए भागवतम क्लास में रोज आना चाहिए और दसम अपराधों का वर्णन आप सुबह सुनते हो उसको ध्यान में रखना चाहिए. और ये बहाना दो क्या करें, हम तो भूल जाते हैं, इसे काम थोड़ी चलेगा. अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना तो हर चीज़ जो आवश्यक उपदेश है उसका स्मरण रहना चाहिए, है ना. और God helps those who help themselves. जो प्रयास करते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान भी उनका सहयोग देते हैं. ओके, हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा. जो पर हिंदी इंग्लिश कम्बाइंड में लेक्चर होगा